जिनका जितना अनुराग है वही बड़ा साधु है। त्याग की महिमा नहीं है, मैंने अंदरूनी एक रहस्य की बात आपको बतला रहा हूं। त्याग के तरफ में आप अधिक मत जाएंगे ना? आप देखेंगे कृष्ण के प्रति प्रेम किसका कितना उच्च कोटि का है, वही उत्तम भक्त है। नारद जी के पास पूछे, दुर्वासा जी है और सब लोग हैं, बड़े बड़े ऋषि सनक सनंदन सनातन इत्यादि का सब समय 9 वर्ष 5 वर्ष के लड़के जैसे घूमते रहते हैं, किंतु ये लोग राधा जी के गोपियों की चरण की कोटि कोटि बार वंदना करते हैं, उनके ध्यान में भी ये रूप नहीं आता जो राधा दामोदर जी का भी जो बतलाया ना। हम लोग इस चीज को देखते हैं, कृष्ण के प्रति ऐसा अनुराग जो जगत में कहीं नहीं है। वैराग्य देखकर के हम लोग भूलने वाले रहते हैं, बड़े बड़े साधारण लोग भी वैरागी हो सकते हैं। वो वैरागी तो जितने हैं उसे मैं तो समझता कि यही परम उसे 1000 गुना वैरागी है, वो तो कुछ खा भी लेते हैं, ये तो
खाती नहीं,
दिन रात भगवान का स्मरण करती है। सामने इसका नहीं कहना चाहिए, वैराग्य कितना है। और कृष्ण के प्रति, स्वयं कृष्ण के प्रति, वो तो शालग्राम की जी की या गोपाल जी की पूजा करते हैं, ये राधा कृष्ण की जुगल की। इसलिए जानबूझ करके हम लोग वैराग्य नहीं करते, अभी वैराग्य करने लाखों आदमी आने लग जाएंगे। बंसीदास बाबा जी थे, मछली का टुकड़ा चारों तरफ में अपने आश्रम के तरफ में फेंक दिया,
हड्डी को घटा दिया,
और जैसे सब लोग अरे ये मछली खो रहे कि क्या है, उसे दूर हो जाए और प्रार्थना से प्रभु हमारे पास ये सब विषयी लोग आकर के पुत्र धन अमुक तमुक ये मांगते रहते हैं, हमको गति व्यस्त कर देते हैं, इसलिए जान छूट कर। राजा जनक जी साधारण थे, क्योंकि चोटी पर वो बैठे हुए हैं और सच मालूम होता है कि राजा है, कोई भी संबंध नहीं, ये सब वैराग्य का मूल्य है जिन्होंने अपनी बेटी सीताजी को रामचंद्र जी के साथ। इसलिए सब समय देखेंगे भगवान के प्रति किनका प्रेम है। चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, यदि हरिनाम में रुचि है, नाम करते हैं, और कृष्ण के प्रति गोपियों जैसा अनुराग है, यही सबसे साधुता का प्रधान लक्षण है। बंदर भी तो घर में कुछ नहीं रखता, कुछ भी नहीं छुपाता, किंतु उसकी दृष्टि कहाँ है,
भोग।
इसलिए ये सब का साधु लोग संत लोग श्रीमद् भागवत के अनुसार में विचार करके कृष्ण का प्रेम जहां उछलता हुआ है बस उसी के प्रति अपने को बेच देते हैं। यदि भजन के द्वारा वैराग्य उसमें आ गया किसी में तो वो तो बहुत अच्छा है, और भजन में उतना अनुराग कृष्ण के प्रति नहीं आया और वैराग्य कुछ हो गया ना तो वैराग्य डुबा देगा, ये बहुत उन्नत स्थिति बात है। अंडरस्टैंडिंग समथिंग, इफ देयर इज वैराग्य, वैराग्य यू नो
रेनाउन,
इफ देयर इज वैराग्य बट नॉट कृष्ण प्रेम सो मच, देन इट इज हार्मफुल फॉर भक्ति, एंड इफ देयर इज भक्ति एंड फ्रॉम भक्ति
रेनाउन
वैराग्य हैज कम, देन इट इज हेल्प फॉर भक्ति, अदरवाइज नॉट। We don't like to be like Sanak Sanandan Sanatan
Thor Kumar
or Durvasa or like the other boys. We want to be a dust of gopis. कष्ट नहीं आए, जो मालूम हो रहा है ना वो ऐसे हवा में उड़ जाएगा, आप लोगों को मालूम नहीं होगा,
बस वही चाहिए,
ऐसा ही होगा, देखेंगे हमारा वचन
ठीक है।
आगता ह्युपन्नम वस्तयन्ते मयि यन्तवः वस्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मनमाजया सद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चनुपोषणं दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्रधनो अधनो दिवा पति स्त्री भी नहा सभ्यो लोकेषु भि अपात्रि आस्वर्गन आजसस्तन अजस्रः करणं च फल्गु कृष्णं भयावहं जुगुप्सितं च सर्वत्र यौपपत्यं कुलस्त्रिया श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान्मयि भावोनुकृष्टनात् न तथा सन्निपर्शेन प्रतिजातो गृह आकर्ण गोप्यो गोविंद भाषितम विषन्ना भग्न संकल्पा संकल्पा तामापु दूरत्यां कृत्वा मुखन्ना मुखन्नवसुच स्वसनेन सुस्यत् बिम्बाधरान् चरणेन भुवं विलिखन्त अस्रैरुपात्तमसिभि कुचकुङ्कुमानि स्वस्थोर्मिजन्त्य उरुदुःखभरा स्मतुष्णीम् पृष्ठं प्रियेतरमिव प्रतिभासमाणम् कृष्णं तदर्थविनिवर्ति तसर्वकामा नेत्रे विमिज्य रुदितोपहृते तो अपहते स्म किञ्चित् संरभ्य गदगद गिरो अब्रुवत्त्वानुरक्ता महाभाग प्रियकिङ्करवाणि वा भजस्यानामयं पतितभ्रूतागमनकार स्वागतम ओ महाभाग वो महाभागा कृष्ण देखे मुक्ति के जलपोर से आरंभ कर तखन देखलन जे से इधर एक प्रशंसा करी जाते कुछ खन एखाने थाके এই জন্য প্রশংসা করছেন স্বাগত বেশ ভালো হয়েছে আপনার আপনাদের আগমন খুব সুন্দর হয়েছে যুক্তিযুক্ত হয়েছে যদিও আমি জাতি নাই তথাপি আপনারা এসেছি তথাপি ডাকার নেই বলছে আমি তো না ডাকলেও আমি তো জানাই না তথাপি আপনারা যে এসে গিয়েছেন মহাভাগা প্রিয় কিং করমান আপনাদের আমি কি প্রিয় করতে পারি মনে মনে ভাবছেন এসে ওরা আমার সামনে মিলনের জন্য এসেছে এই জন্য তারা বলবে যে সে তাহলে আমাদের মিলনের মধ্যে আমাদের স্মৃতি আছে সেই আলাপ আলোচনা ইত্যাদি বিহার এইসবগুলি আমাদের কাম এই উদ্দেশ্যে তিনি বলছেন প্রিয় কিং করবানি বা ব্রজস্য অনাময়ম ব্রজের কোনো অকুশল তো নেই এটা তোমাদের দেখলেই মনে হচ্ছে তোমাদের মুখ প্রসন্ন অতএব কোনো অনাময় নেই কোনো রকম হতে কোনো অসুবিধা নেই তথাপি তোমরা যে এসেছ দ্রুত আগমন কার কচিত না কোনো যদি হয়ে থাকে মনে তাহলে তোমরা স্পষ্ট করে বলো তোমাদের কি কারণ জন্য একজন কৃষ্ণের বাক্য বিভাব আর তার ভিতরের ভাব দুটা এর সাথে বলছেন যে তোমরা থাকো আর একটা বলেছেন ফিরে যাও ফিরে যাও ফিরে যাওয়া তার মানে ভিতরের উদ্দেশ্য না এটা বাইরে গোপীরা তার ঠিক ওরা এটাকে বলে সংলাপ কৃষ্ণ যা বলছেন ঠিক তার বিপরীত ওরা বলবে। কৃষ্ণ বলছেন যে চলে যাও, তো ওরা তো অন্যরকম লাগা। আর কৃষ্ণ বলবে যে না থাকো, তখন বলবে যে আমরা কেন থাকবো,
এখনই যাচ্ছি,
আমরা এখনই যাচ্ছি, তোমার সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, কোন সম্বন্ধ, আমরা পতির সেবা করে বেশ আরামে আছি, তাহলে আমরা এই উপপতি এই সবগুলি কলঙ্কিত কাজ করবো কেন, এই জন্য তোমার অধর্ম হবে, এই জন্য তোমাকে আমরা সদুপদেশ দিচ্ছি, তোমরা তুমি আমাদের প্রতি যে আশা আছে ছিন্দ সেইটাকে কেটব, সেইটাকে বলছেন সল্লা। যেরকম কৃষ্ণ বলছেন তার উত্তর প্রত্যুত্তর এসে এইগুলিকে তারা মনে করে কখন, যখন উদ্ধব আসবার পূর্বে কি যখন হয় ওরা মনে করে ওই অত্যন্ত ভাবাবিষ্ট হয়ে যায়। দায়িত্ব ছেড়ে পালানো কি ভরুন, ওদেরকে সবই বলে এইসব কথা বলে না,
বলছে না না কর্ম ভেদ ভেদ বুদ্ধি ভেদ জনিত কর্ম সঙ্গী না,
ওদেরকে যতটুকু ভাবতে থাকে ধীরে 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 বিশ্বাস শ্রদ্ধা সব জানিয়ে দিলে, আর নাহলে তো যা আছে তারা এক
ব্রজভর মে সবসে অধিক শ্রেষ্ঠ মথুরা মন্ডল, মথুরা সে ভী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ গোকুল, যা পর জন্ম লীলা ইত্যাদি ভী, আর উসে ভী শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ বৃন্দাবন, যা রাসস্থলী সেবা কুঞ্জ নিধুবন আর বন্সীবত হ্যাঁ, আর উসে শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ গোবর্ধন কে নিকুঞ্জ হ্যাঁ, ও শ্রেষ্ঠ হ্যাঁ এদিকে এসে খোল বাজা, তো গোবর্ধন সে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড মে ভি রাধাকুণ্ড হি শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণ উসি মে স্নান করতে হ্যাঁ, আর কৃষ্ণ কি জিতনে ভি সর্বোত্তম লীলা হ্যাঁ কীর্তন করকে সব হম কীর্তন এক করকে
ভক্তরাজ প্রহ্লাদ মহারাজ কি জয়, जगन्नाथ प्रतापला देश दर्शन जीव की जय अनंत गरीब वैष्णव वृंद की जय समवेद गौर भक्त वृंद की जय गोत्रमानंदे हरि हरि बोल
की महिमा समझने के लिए थोड़ा हम नीचे से आरंभ करते हैं। नीचे से मैंने ये संसार कर्ममय संसार है, मैं शरीर ही मैं हूँ और हमारे जो संबंधी है वो मेरे हैं, ये सब जगत सत्य है और इसी में दिन रात लगे रहना, इसको कहते हैं कर्म मार्ग। आत्मा का तनिक भी कोई ज्ञान नहीं है, जिसके शरीर के भीतर में कोई है और वो भगवान का अंश है, ये ज्ञान नहीं रख करके इसी को सत्य मान करके सांसारिक सुख पाने के लिए जो कार्य करते हैं ये है कर्म। कर्म का स्थान माना गया ये सागर है ना, सागर में मेला होता है महासागर
गंगा
सब तीर्थ बार बार और
गंगा सागर
का सागर एक बार, इसलिए कहा जाता है वहाँ पर दान पुण्य खूब होता है, कपड़े देते हैं लोगों को, कंबल देते हैं, भोजन देते हैं गरीबों को दूसरों को, ये सब दान पुण्य सब काम करते हैं। किंतु वहाँ पर लाखों लाखों की जो भीड़ होती है उसमें लोग जो जाते हैं उस गंदे पानी में स्नान करते हैं, जहाँ पर कि टट्टी फट्टी यह सब होती है, ज्वार भाटा आया और फिर बहा ले गया, फिर उसको ले आया, फिर उसमें स्नान कर। जिस कर्म मार्ग से हमारे पूर्वज लोग सुख नहीं पाया, वृद्धावस्था में सभी मरे, दुख से मरे, इसको जानते हुए भी हम सब फिर कर्म मार्ग में लग जाते हैं, ये गंगा सागर का ये बात है। इसलिए वहां से चल करके महाप्रभु जी दिखला रहे हैं गया में आओ और कर्मनाशा में सब कर्म को फेंक दो और फेंक करके कर्मों को शुद्ध बनाओ। शुद्ध कैसे बनेगा? उन कर्मों को भगवान के लिए करो। बेटा हमारा भगवान का दास है, हमारे पति हमारे प्रभु के ही दास है, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु की दासी हूँ, इस भाव से एक संबंध लेकर के कर्मों को शुद्ध रूप में सत्कर्म में भक्ति के कर्म में बदल देना। ये गया जी में वो विष्णु का पाक पद्म है, वहाँ पर जाते हैं अपने पुरखों के लिए पिंड इत्यादि देते हैं, ये सब होता है गदाधर जी का चरण कमल वहाँ है। तो कर्म ऐसा होना चाहिए जिसे अपने को न बांधे। कैसे नहीं बांधेगा? यज्ञार्थात कर्मणो लोकायमानत्र कर्मण्य, कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हैं, यदि हमारे लिए कुछ करेगा और प्रसाद कुछ ले लेगा तो ये बुरा नहीं, इसको यज्ञ कहते हैं। इसलिए हमारे उद्देश्य से अब कर्म को करो। संसार की आसक्ति है, कर्मों में जा सकती है, इसका भाव जब मैं करने वाला हूं ये छोड़ो, प्रभु की कृपा से ही कुछ शक्ति हम में है तब हम कुछ कर रहे हैं, अन्यथा ये जिस समय वो शक्ति निकल जाएगी ये वहां प्रभु की कृपा हट जाएगी, ये कुछ नहीं कर सकेगा। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उसका भैया देखा ना, एक मिनट में जिन्हें कहा, कोई आकाश में मर गए, कोई यहां मर गए, क्या मर गए, कोई पता ही नहीं चला कहां। इतना बल पौरुष, राष्ट्र का सारा बल उनके पीछे था। इसलिए जो करना है, कर्ता का अभिमान छोड़ो, जो मैं करने वाला हूं, मैं उनकी शक्ति से उनका सेवक जो कुछ कर रहा हूं उनको दे करके और फिर प्रसाद के रूप में जीवन निर्वाह के लिए हम अपने लिए लेंगे, ये यज्ञ है। ऐसा यज्ञ अर्थात कर्मनो लोकाय मन्नत प्रकर्म बंधन, नहीं तो वो बंधन का कारण बन जाएगा। कल बतला रहा था ना भरतरी जी का,
आज ही बता रहे थे,
आज ही
बतला रहे थे,
ये क्या बात रही है, प्यार करने गए, प्यार नहीं उसको बचाने गए, मैं बचाने वाला, तुम जीवन देने वाला है जो बचाने वाला है, अभिमान क्यों किया? यदि ये कहता जी भगवान का सेवक है इसको बचा दो फिर आसक्ति नहीं होती, तब तो वो बच गए होते। और थोड़ी सी आसक्ति रह गई जो ये मैं करने वाला इसको प्यार करके बचा दूं, ये इसका बचाने वाला मैं हूं, ये उनको लेकर के बैठ गया, इसलिए इसको छोड़ना गया में छोड़ना है इसको। जब आगे बढ़ेंगे तो अब ज्ञान मार गया काशी, हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्वम खलिदम ब्रह्म इत्यादि, मैं ही ब्रह्म हूं, करने वाला जो कुछ है वही मैं ही हूं, तत्त्वमसि तुम भी वही हो, सर्वम खलिदम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये गया वहां जाएंगे हरिद्वार काशी, काशी में और हरिद्वार में ये भावना, अरे तू ही सब कुछ है ब्रह्म है, तो तू इस जगत में बिलबिला क्यों रहा ना, क्यों बिलबिला रहा है, जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ा। शंकराचार्य जी क्यों कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, नहीं नहीं रक्षति दुख प्रतिकरण, संस्कृत में अनुस्वार विसर्ग ये सब काम नहीं करेगा। बूढ़ा होकर के तू संस्कृत पढ़ रहा है कंखं कर रहा है, ये तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, रक्षा गोविंद का भजन कर तब तेरी रक्षा। तो वो लोग कहते हैं कि सर्वम खलिदम सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये जगत स्वप्न है, तो स्वप्न में तू क्या कर रहा है, तू उपदेश दे रहा है वो भी तो असत्य है, सभी प्रभु के दास है स्वरूपतः, कोई माने और न माने। कृष्ण का अवतार झूठा नहीं है, राम का अवतार झूठा नहीं है, हमारे वेद शास्त्र झूठे नहीं है, संसार सत्य है, ये संबंध भी यहां पर सत्य दिख रहे हैं, किंतु ये मेरा पुत्र है मेरा भाई है मेरा पति ये झूठा है। ये संसार जो आ रहा है देख रहे हैं, सूर्य उग रहा है समुद्र है और ये सब जो क्रियाएं हैं ये असत्य नहीं है, सभी भगवान के दास हैं, भगवान से ही पैदा हुआ है, यदि भगवान ने पैदा किया तो वो सत संकल्प है, उनका संकल्प कोई भी झूठा नहीं होता, तो ये संसार झूठे कैसे हो गया। तुम्हारा बाप हमारा बाप झूठा है, जिसे पैदा हुआ तुम्हारा गुरु झूठा है, ये कहा गया इसलिए कि कृष्ण ने कहा उनके श्वास से वेद है, उन्होंने कहा कि मेरे से सब प्रकट हुआ है इसलिए मेरा ही अंश है, इस रूप में ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म हूं। कृष्ण कह रहे हैं तो झूठा नहीं, हम यदि कहें जब ब्रह्म हूं तो ये झूठ बात है। किसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं अरे भाई तू तो शेर है, आपने कोई वीरता का काम किया, आपको एक उपमा देने के लिए बतला दिया ये शेर है, ये तो बल की दृष्टि से आपको कहा, गुण की दृष्टि से शेर जैसे आपका सिर हो गया मुख हो गया लड़ने लग गए ये नहीं
हो गया
तो बड़ा भारी गधा है, तो गधा हो गया
बिल्कुल ब्रह्मचर्य
गधा का तात्पर्य ये नहीं है, उसी तरह से शास्त्र में कहीं कहीं उपमा देकर के ऐसा बतला है, इसलिए हम सभी ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म से निकले हुए हम लोग जीव तत्व हैं, मम वंशो जीव लोके जीव, इसलिए जल्दी से वहां ठार नहीं करके वहां से भागो और एकदम प्रयाग में पहुंच जाओ, प्रयाग में वैकुंठ का स्थान है, वहां पर नील माधव जी क्या है
बिंदु माधव जी
का वहां पर प्रयागघाट में स्नान करके उनका दर्शन, वो भक्ति करता भगवान का भजन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ये शरीर को छोड़ना पड़ेगा, एक तेजमय शरीर है उसको प्राप्त करके वैकुंठ, वैष्णव लोग इसको भी पार कर जाते हैं मथुरा में पहुंच जाते हैं वहां नहीं रुकते। तात्पर्य क्या है, वैकुंठ से भी बढ़कर के मथुरा द्वारका श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की वहां पर जो लीलाएं हुई प्रयाग में और कहीं भी नहीं, इसलिए सबसे श्रेष्ठ ये मथुरा मंडल है। मथुरा में देवी के गर्भ से वसुदेव जी के घर पर मथुरा में जन्म लीला किया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के 16 वर्ष जैसे आविर्भूत हो गए, बच्चा जैसा पैदा होता है ऐसे नहीं, ये हुआ कहाँ गोकुल में, 55 की क्रीड़ाएं वहां पर हुई, वहां पर नाड़ी छेदन हुआ, यहाँ पर कृष्ण पैदा हुए 16 वर्ष जैसे और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बड़े बड़े केश घुंघराले वस्त्र पहने हुए अलंकार धारण किए हुए वहाँ पर नाड़ी छेदन का कार्य वहाँ पर मथुरा में नहीं है, इसलिए वहाँ पर जन्म नहीं हुआ। वहाँ पर तब प्रकट हो गए भगवान के रूप में। और गोकुल में क्या हुआ, आ रहा है समझ में? गोकुल आपसे कह रहा समझने की चेष्टा करेंगे, ये भगवान की विशेषताएं हैं, साधारण आदमी इस चीज को नहीं जानते। गोकुल में नंगे जैसे बच्चे पैदा होते हैं कृष्ण यशोदा जी के घर में पैदा, दूसरे दिन जब मालूम हुआ तो सब आए लोग और उनका नाड़ी छेदन हुआ और जात संस्कार, जो जन्म होता है उसका संस्कार सब आया, स्त्रियां गाना गाने लग गई और जो जो स्नान बच्चे को इसको अभिषेक होता है, ब्राह्मण बुलाए गए, ये सब हुआ मथुरा में, ये सब काम हुआ। इसलिए मथुरा मंडल में सबसे श्रेष्ठ वो गोकुल है। गोकुल में उतना वध इत्यादि की लीलाएं हैं। और यशोदा जी ने कृष्ण को प्रेम से बांधा, जो कल बतला रहा था या आज भी बतला रहा था, जो कृष्ण को कोई दर्शन नहीं पाते हैं ब्रह्मा शंकर इत्यादि लोग, और यशोदा मैया एक गोपी होकर के बड़े प्रेम से उनके कमर में बांध करके ओखल के साथ उनको बांध दिया। आज तक कोई ऐसा दृष्टांत नहीं है जो भगवान को कोई बांध सका, ये प्रेम से वहां पर बंधे हैं। ये तो गोकुल की लीला। इसके बाद में चलिए वृंदावन में आइए। उसके बाद में 3.5 वर्ष के बाद में उम्र में कृष्ण वहां से चले आए। वृंदावन में छठी करा स्थान है, वहां पर कृष्ण का, कृष्ण को लेकर के यशोदा मैया नंद बाबा और सब लोग वहां पर उतरे। गाड़ी में ही घर रहा, गाड़ी के नीचे उनके पलने तलने सब कुछ टांग दिए गए और चारों तरफ में कांटों को काट करके चारों तरफ से घेरौंदा बना करके प्राचीर बना दिया गया, जिससे कि दुष्ट लोग ना आ सकें या कुछ हो सके। और वहीं से वृंदावन में धीरे धीरे अब 3.5 वर्ष से अधिक होने लगे, बछड़ों को चराने जाने लग गए। वहीं से बछड़े चराते, वहीं से कालिय दह में कालियों को उन्होंने दमन किया और भी सब लीलाएं वहां पर। कुछ दिनों के बाद में अब ये बड़े हुए, अब किशोर होने लगे, और लोग किशोर होते हैं 12.5 वर्ष के बाद में, 12 वर्ष के बाद में, और कृष्ण 8-9 वर्ष की उम्र में ही किशोर हो गए। गोपियां वैसे खाते पीते और उस समय का युग था और दधि दुग्ध मक्खन नवनीत यही सब खाते थे, घर की बनी हुई सब चीजें, इसलिए पुष्ट थे। इसलिए किशोर का रूप उनमें उसी समय में प्रवेश हुआ, जगत को अपने रूप से मोहन करने लगे। वहीं पर रास हुआ वृंदावन में, बंसी बट देखा है ना, यमुना के किनारे अपूर्व उस समय उसका दृश्य था वृंदावन, बेली चमेली जूई इत्यादि से भरा हुआ, मयूर नाच रहे हैं, कोयल कुहू कुहू कर रही है, यमुना कहुबंद फूलों से कमलों से भरा हुआ है, भ्रमर झंकार कर रहे हैं। और कृष्ण ने बंसी बजाई, और कैसे बंसी बजाई, इसमें सब लोगों ने यह सुना जैसे कृष्ण हमको ही बुला रहे हैं, मेरा ही नाम कर रहे हैं। सभी लोग माने कौन, माताओं ने सुना, कुमारिकाओं ने सुना, नहीं, सखाओं ने सुना, माता पिता ने सुना। ऐसी बंसी अपराकृत, जो जिसके योग्य है उसी के कानों में गई और वो लोग सुन करके उन्मादनी हो गई, घर में ठहर नहीं सके, और वो लोग जो दूध उबाल रही थी वो उबलता हुआ छोड़ दिया। कोई पतियों को परिवेशन कर रही थी उसको भी छोड़ दिया, कोई रोटी पका रही थी रोटी तवे पर रह गई जलती रह गई, और वो कोई आजन अपने आंखों में अंजन लगा रही थी अभी एक बार लगाया है एक आंख में बस वहीं से छोड़ दिया, दूसरी आंख में नहीं लगा सकी। कोई उठाया था जो गले में हार पहनेंगे, अभी हार उठाया था इतने में बंसी बजी, उसने गले का हार कमर में दे दिया, कमर की करधनी लेकर के वो दे दिया बैठ करके श्रृंगार कर रही थी। श्रृंगार करते ही उस बंसीबाजी छोड़ दिया श्रृंगार, कपड़े जमीन में उसके उत्तरीय गिर रहे हैं तो वैसे गिरता रह गया और वैसे ही चल पड़ी उठाने की उसको समय और खोज खबर नहीं। जो आजगमो अन्नो अन्नम अलक्षितो जमा, दूसरी कोई नहीं देख रही, हम अकेले ही जा रहे हैं, बावरी सी हो गई। क्यों? कृष्ण ने उनका चित्त चुगा दिया। कब चुगाया? ऐसी बंसी भरी मनोहर की जो जहां से ये सब लोगों ने सुना उनके कानों में प्रवेश करके उनके भीतर जो मन था, मन को चुरा करके निकाल करके लेकर के भगी बंसी ध्वनी, और ये उसके पीछे पीछे दौड़ी। जैसे किसी घर में कोई रत्न रखा हो और चोरी करके कोई चोर चला जा रहा हो, उसमें प्राणों का मोह छोड़ करके चोर को पकड़ ले, यहां तक कि बोलने का नहीं जा रहे, पकड़ो पकड़ो ये भी नहीं बोल सके, और उनके पीछे पीछे कहां चली? जहां से वो बंसी की ध्वनि आ रही थी, ठीक लाखों लाखों गोपियां वहां पर थे। कृष्ण ने कहा घर लौट जाओ, हमको देखने के लिए आई, स्वागतम वो महाभागा, आप लोगों का बड़ा स्वागत है, बहुत अच्छा काम, मैं तो भगवान हूं इसलिए दर्शन करने के लिए आई, हमसे प्रिय कोई है नहीं, मैं ही आत्मा का प्रिय हूं, बहुत अच्छा है, अब आप लोग घर में लौट करके पति की सेवा करें। बहुत से उपदेश दिए गोपियों ने, कहा ये उपदेश आपके चरणों में रहे, क्योंकि आप तो जगत गुरु हैं, हमारे भी गुरु इतना सुंदर उपदेश दिया तो अब हमारे गुरु ठहरे, गुरु की पूजा कर लें तो फिर आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, और आप ही तो जगत के पति हैं, पति जो पालन पोषण करता है, पालन करना शरण करना, आपके समान आपके छोड़ करके ऐसा जगत में कोई है जो आप ही न मरे और स्त्री को भी मरने न दे? सब पति तो प्राय या तो अकेले जाते हैं चले जाते हैं पहले, नहीं तो पीछे स्त्री चली जाती है, एक साथ में तो बहुत कम ही लोग जाते हैं, वो क्या पति की रक्षा करेंगे या क्या पति उसकी रक्षा करेगा? इसलिए परम पति आप हैं, और गीता में आपने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम, जो हमको जितना भजन करता है जितने अंशों में अनुपात में उतने ही रूप में मैं उन लोगों को वैसा ही फल देता हूं। तो हम लोग आपके पास में आई, आप गुरु ठहरे और पति भी परम पति हैं, पहले आपकी हम सेवा कर लें गुरु की, इसके बाद हम सेवा कर लें। कृष्ण इसका उत्तर नहीं दे सके, रास आरंभ हुआ, उस रास में सब प्रकार की गोपियां थी, पंचायती रास, पंचायती धर्मशाला होती है ना, तो वह एक दिन नहीं चलती पंचायती, वो कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वैसे पंचायती रास थी, पंचायती रास मैंने उसमें नित्य सिद्ध गोपियां, राधा जी की कायद युहां जो कभी भी संसार में नहीं आकर के बद्ध नहीं हुए, और कुछ इसमें साधन सिद्धा, साधन के द्वारा सिद्ध होकर के उसमें पहले, जैसा हम लोग अभी साधन कर रहे हैं, यदि कृष्ण की कृपा हुई, वृंदावन की कृपा हुई तो सिद्धि लाभ करने पर फिर हम लोग वहां पर पहुंच सकते हैं, तो ये हुआ साधन के द्वारा सिद्धि। तो ये सभी गोपियां उसमें थी, जनकपुर की राजकुमारियां थी जो कि राम के रूप को देखकर के मोहित होकर के ऐसा ही पति हमको मिले, रामचंद्र जी ने मन ही मन अनुमोदन कर दिया, जो ठीक है कृष्ण लीला में तुम लोग आ जाएगा। वैसे वेद की ऋचाएं इस भाव को सुन करके देख करके मुग्ध हो गई, और गोपी भाव से उन ऋचाओं ने उनकी तपस्या की आराधना की तो वो भी गोपी होकर के आए। 60,000 दंडका ऋषि आश्रम के ऋषि लोग थे पुरुष, किंतु कृष्ण को स्त्री रूप में गोपी बन करके उनकी सेवा प्राप्त करने के लिए आराधना की, रामचंद्र जी की कृपा से वो लोग भी गोपियों के घर में गोपी होकर के जन्म लिया। तो ये सब वहां पर जितनी थी उनमें से जो परिपक्व हो गई प्रेम में वो सभी रास में, इसलिए रास में थोड़ी देर के बाद में कृष्ण ने जितनी लाखों गोपियां थीं, विशेष करके 16,000 लोग कहते हैं 16,000, उन एक एक गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण हुए, सबकी इच्छा पूर्ण करने के लिए। और सभी ने ये समझा कृष्ण केवल मेरे पास है, कृष्ण केवल मेरे पास। केवल एक व्यक्ति थी राधा जी जो बीच में खड़ी थी और सबसे श्रेष्ठ, उन्होंने अपने पास भी देखा और जब नेत्र से उधर देखा तो इसका अरे उधर भी है, फिर उसके तरफ देखा तो उसके तरफ भी है। तो और लोगों को ये जो मालूम हुआ कि मेरे ही पास केवल है, मेरे कंधे में हाथ लगा करके नृत्य कर रहे हैं, मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे श्रम बिंदु को पूछ रहे हैं, कहते हैं अरे थक गई पैर दबा दूं, वो समझ रही है ये बस केवल हमारे पास में है और मैं ही इनकी सबसे अधिक प्रिया हूं। इसलिए उसको हो गया मद, सौभाग्य मद, इसको सुहाग कहते हैं। सुहाग बने क्या, पति जिसके बस में हो, जो स्त्री कहती है वही पति करता है, यही उसका सबसे बड़ा सुहाग है। और स्त्री ने कहा कि ये थोड़ा सा चाहिए, कहा नहीं होगा, ये वो इधर चलती है तो वो चलते हैं इधर, ये सुहाग नहीं। स्त्री का सुहाग यही है, ये पति उसके एक तरह से वशीभूत हो, वो जो चाहती है वैसा करते हैं, ये सुहाग है। तुम्हारा सुहाग अचल रहे, पति तुम्हारे वशीभूत रहे, ये तात्पर्य। तो इनको सौभाग्य मद हुआ, मद माने होता है कोई मदिरा पान करके मत तो होता है, उसको कहते हैं मत वाला। तो ये अपने सौभाग्य मद में, सौभाग्य मद में ये कुछ मत वाली हो गई, देखा जैसे ही हमारे ही वशीभूत है और किसी के साथ में नहीं है। अब ये दूसरों को तृण जैसा समझें, अपना जैसा किसी को नहीं। और राधिका जी को क्या हुआ, अरे हम हमारे पास में है, उसके पास में है, इसके भी पास में है। तो ये जो कहता है जो तुम ही हमारी सबसे बड़ी प्रिया हो, ये झूठ बात है, ये मक्कार हैं, लवार हैं, धूर्त हैं, ये सभी को ऐसा कहते हैं, धोखा देते हैं, इसलिए इनको हो गया मान। सुहाग जो था वो थोड़ा सा तलमटल हो गया, इसलिए कहते हैं राधा जी को हो गया मान। अब कृष्ण देखा जी अब तो रास होगी नहीं, सबको मिला करके चलने से सबका एक समान भावना होनी चाहिए, और एक का ऐसा एक का वैसा, बिजनेस में भी वैसे ही, हम चाहते हैं ये और वो चाहता है वो, तो वो एक दिन गाड़ी नहीं चलेगी। एक समान भाव होना चाहिए सब विषय में। यहाँ पर हम लोग हैं, यहाँ पर एक दूसरा भी कथा कहने लग जाए तो फिर क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। सब एक समान जाति होना चाहिए, ये समझाती है तो है नहीं, किसी को हो गया मान, किसी को सौभाग्य मत, किसी को कुछ, ये तो गड़बड़ हो गया। अब इनको कैसे रास्ते पर लाए, इसलिए तत्वान्तर ध्येयत, सोचा जी ऐसे नहीं होगा, यदि अंतर ध्यान यहां से हो जाऊं, यदि छिप जाऊं कहीं और ये नहीं देंगे तो सब बिलाएंगे, उनका मान भी दूर हो जाएगा इनका, इसलिए यह सोच करके उस पंचायती रास में, पंचायती माने क्या, एक एक आदमी का एक एक विचार, तो वो अधिक दिन नहीं चलेगा ना, एक समान होना चाहिए, तो इनका विचार सब एक समान लाना चाहिए, तो इसलिए वो अंतर ध्यान हुए। किंतु कैसे अंतर ध्यान हुए, जिनको मान हुआ था उसको साथ ले लिया, क्योंकि उसका मान भंग करना है, उसका ऐसे मान भंग नहीं होगा, उसका मान और बढ़ जाएगा, इसलिए उसको साथ ले लिया। किंतु किसी ने देखा नहीं, जिनको सुहाग का मत था उन लोगों ने किसी ने नहीं देखा, उसको ले लिया, अंतर ध्यान हो गया। अब इनको ये खोजने लग गई, जो खोजने लगी, अनाराधितो नूनं भगवान हरि ऋष्वर, कुछ गोपियां कह रही हैं जो राधा के जी के पक्ष में है, वो कह रही हैं अनाराधितो नूनं, निश्चित रूप में इस गोपी को जो साथ ले गए हैं, जिनका पैर कृष्ण के पैरों के साथ में है, कृष्ण से छोटा बड़ा ही सुंदर पैर है, ये जरूर गोपी ने भगवान की आराधना की और उससे ये कृष्ण का संग इसको मिला, निश्चित रूप में ये कौन है, कृष्ण के राधा जी के पक्ष वाली कर रहे हैं। इसके बाद में वो आगे बढ़ी, थोड़ी देर के बाद बढ़ने के बाद देखा केवल कृष्ण ही का ही पैर है, उस गोपी का पैर नहीं है, और कृष्ण का पैर बालू में थोड़ा सा धसा हुआ है। तब एक कह रही है, ओ बड़ी दुख की बात है, कि गोपी का चिन्ह नहीं यहाँ पर पैरों का, मालूम होता है उन्होंने उठा लिया अपनी गोदी में इसको, और बड़े प्रेम से वो चल नहीं सकी होगी उसको अपनी गोदी में उठा लिया और तब लेकर के जा रहे हैं,
इसलिए पैर दबा हुआ है भोजन पड़ा।
तो ये दुख जो हुआ ये कौन है? विपक्ष वाले ये चंद्रावली इत्यादि का ये भाव, तरह तरह की उसमें गोपियां हैं। आगे और बढ़ी, आगे बढ़ी तो देखा जो फूल गिरा हुआ है और एक लता में या एक पुष्प में पेड़ में नीचे के फूल नहीं है और कृष्ण का चरण इतना ही इतना तक, अगर जी यहाँ पर पैर उठा करके पेड़ की डाल को नवा करके उसमें से फूल तोड़ करके यहाँ पर जो फूल गिरा है वहीं पर उसका श्रृंगार किया, बेनी गुथाई ये देख करके प्रश्न हुई ये कौन हुआ? सुहृद वाली, जो उनकी पक्ष तो नहीं किंतु सुहृद वाली है, उनका भला चाहने वाली, बड़ी प्रसन्न हो गई। थोड़ी देर और आगे बढ़ी जैसे अब मालूम होता है जब निकट में ही कहीं है, कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो आ गई, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी चलिए ये लोग अभी आ जाएंगे, पर आपको देख करके दोसा रूप होगा, आपके प्रति द्वेष हो जाएगा, फिर प्रेम भावना नहीं रहेगी। उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकती। उन्होंने सोचा कि इन गोपियों ने जो हमारे लिए सब कुछ किया, हमारी सेवा करती है और मैं इनको छोड़कर के कृष्ण के साथ में अकेले रहूं, ये मेरे लिए उचित नहीं, इसलिए वो आ जाए तब मैं चलूंगी, इसलिए प्रतीक्षा करना है। कहा जब मैं नहीं चल सकती, यदि ले चलना है तो आप ले चलिए। कहा ये तो तुम्हारे कंधे पर बैठो। जब कंधे पर पैर उठाया, जाना तो चाहती नहीं थी, इतनी देखा जैसे वो है नहीं, कहाँ गए, वो भी विलाप करती करती वहीं पर मूर्छित हो गई और स्त्रियां सब आई। देखा जा रही ये तो विलाप करते ही मूर्छित हो गई, बस पेड़ की डालियों को तोड़ करके उसके पंखे बना करके चलने लगी, कुछ सरोवर से पानी लेकर के छिटा देने लगी, किसी प्रकार से उसको चेतन कराया, अब वो विलाप कर। मैं मदहंत हो गई, मैं समझ नहीं सकी, इसलिए हमें छोड़ करके चले। अब उन्होंने देखा अब सजातीय हो गई सब, वो भी खोज रही है ना कृष्ण के विरह में, और इधर जितनी भी थी ये भी विरह में डूब गई, और ये जिसके लिए छोड़ करके गई थी, यदि दोनों को कृष्ण को और राधा जी को ये सब देखती तो वहां पर उनको द्वेष हो जाता, फिर मिलन नहीं होता। देखा जी ये भी जिसको छोड़ा ये भी ले गए थे, उसको भी छोड़ दिया और इस तरह से विलाप कर रही है, तो ये भी उसके साथ में विलाप करने लगी, सांत्वना देने लगी, अब सब मिलकर के एक हो, अब ठीक। तब हुआ वो घूमते 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 आकर के फिर जयतीति अधिकम, ये 31 अध्याय का उन्होंने गान करने लगी। गान करते करते ऐसे तन्मय हो गई, ऐसे तन्मय कृष्ण से रहा नहीं गया, वहां पर फिर आए। इसके बाद में फिर उनको समझा बुझा करके फिर रास, तो ये हुआ पंचायती रास। सब गोपियों से सबको जैसा 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 भाव है, कांटे पर भजन करके जिसका जैसा भाव है वैसे भावों का वैसा ही उतना ही दिया, न अधिक न कम। जे जथा माम प्रपद्यन्ते, ये इसका था। एक आदमी संसार की उन्नति के लिए यदि प्रभु की प्रार्थना करता, अच्छा लो, कोई मुक्ति चाहता, अच्छा जाओ ले लो, कोई चाहता है मुझे वैकुंठ चाहिए, बहुत अच्छा, मैं रुक्मिणी की दासी होकर के आपकी सेवा, बहुत अच्छा, ब्रज की भक्ति नहीं देंगे सर, बड़ी मुश्किल से देंगे, क्यों? उसके अधिकारी कम हैं। ये सबसे बड़ी योग्यता है वृंदावन में, सख्य भाव से, दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से या मधुर भाव से उनकी सेवा करना बहुत कठिन है, बहुत कम रेयर लोगों को, कोटि स्वपि महामुने, कोटि कोटि लोगों में से कोई एक को होता है। स्वर्गत अनायासी ही हाथ का मैल, वो कहते हैं हमारे पास इसके लिए मत आओ, हमारा जो दरवान चपरासी शंकर जी और ब्रह्मा जी हैं ये सब तुमको दे देंगे, दुर्गा जी हमारी रक्षेत्री हैं, महिला विभाग की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, चले जाओ उनके पास में, और वो इन सब चीजों को दे देती हैं। दुर्गा जी राधा जी की छाया से भी छाया है, इनकी छाया का नाम है ये दुर्गा, असल में दुर्गा नाम राधा जी का है किंतु यह नाम उन्होंने अनुग्रह करके उनको दे दिया। इस तरह जितनी देव्या देवियां हैं और जितने हैं सब उनके दास या दासी हैं। जो कुछ ये लोग देते हैं किसी को वर, ये किस लिए कैसे देते हैं? कृष्ण की शक्ति के द्वारा। कृष्ण की कृपा न रहे तो ये कुछ नहीं दे सकते। शंकर जी राम राम ये सब कह करके मुक्ति दे देते हैं। इसलिए जो कुछ इन लोगों में शक्ति है वो सब कृष्ण की दी हुई शक्ति है, बिना उसके कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी को देखा भागवत में, वरुण को देखो, इंद्र को देखो, सब लोगों को शक्ति देने वाले यही है। बतलाना जो वहां पर दुर्गा जी वहां पर कुरुक्षेत्र में वो जब ये पकड़ करके लाया इसको भरती को बलि देने के लिए, तो उनका नाम हो गया भद्रकाली जो उनकी रक्षा की, और बोली जी अब ऐसा मत परीक्षा हमारे लिए। ये भद्रकाली को भी शक्ति देने वाले कौन है? हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो वहां दुर्गा जी खड़ी होकर के राजे मत इधर मत आओ,
लंकिनी
लंकिनी के रूप में हनुमान जी ने ऐप घूसा मारा, वो गिर गई, गिर करके उठ करके हाथ जोड़ के बोली अरे आप हनुमान तो नहीं, मैंने सुना था जी हनुमान आएंगे और जब ही मुझे मुक्का मारेंगे तो अब मैं लंका में नहीं रहूंगा, अब लंका का ध्वंस अनिवार्य है। अब मैं चली, अब आप खूब जाइए, वहां से कर के लिए आई और थोड़े दिन के बाद में लंका का ध्वंस हो गया। तो ये भगवत भक्त लोग हनुमान इत्यादि ब्रह्मा शंकर इत्यादि शंकर जी ही बने हैं, ये हनुमान जी गरुड़ जी कौन है वही बने हुए हैं, और ये सब का मूल है कौन? बलराम जी जो संकर्षण है, वो शिव इत्यादि को शक्ति देने वाले ये सब कौन है? ये बलदेव जी हैं, सबको बल देते हैं, और वो बलदेव जी कृष्ण के अंश हैं। तो बतलाओ कृष्ण कैसे हैं?